أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. ناظرین گرامی، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں ہم مشہور شیعہ تفاسیر کا تعارف کروا رہے تھے، تو اس میں بعض تفاسیر کا ذکر کیا. آج ہم جس تفسیر کا تعارف کروانا چاہتے ہیں بہت ہی مشہور اور معروف تفسیر ہے، اور بہت ہی بہترین اور قابل استفادہ تفسیر ہے، جس تفسیر کا نام ہے مجمع البیان. بہت مشہور شیعہ تفسیر ہے مجمع البیان. ان کے رائٹر جو ہیں، اس تفسیر کے لکھنے والے مؤلف، ان کا نام ہے ابو علی فضل بن حسن تبرسی. تبرسی بھی کہتے ہیں بعض، تبرسی بھی کہتے ہیں، اور معروف ہیں امین الاسلام تبرسی کے نام سے، اور بہت بہترین اور محقق اور بہترین مفسر عالم دین ہیں. اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 548 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ تفسیر جو مجمع البیان ہے کس ہجری میں یا کس صدی میں لکھی گئی ہے، تو یہ تقریباً جو ہے وہ چھٹی ہجری میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے، چھٹی صدی میں کہہ سکتے ہیں. اور زبان جو ہے اس کتاب کی اور اس تفسیر کی وہ عربی ہے، عربی میں لکھی گئی ہے. بہت زیادہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ روش کے اوپر ہوتی ہے. پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر تفسیر کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار وہ بہت زیادہ مہم ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلی جو جتنی تقریباً تفاسیر کا تعارف کروایا، ان میں سے بہت ساری تفاسیر جو ہیں ان کی روش روائی تھی، یعنی ایک آیت کو لیتے تھے اور اس کے ذیل میں روایت کا ذکر کرتے تھے، اور روایت کے ذریعے اس آیت کی تفسیر بیان کی جاتی تھی. تو اس تفسیر کی جو روش ہے وہ فقط روائی نہیں ہے، بلکہ اس کی جو روش ہے وہ روش اجتہادی روش ہے. اجتہادی روش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط روایت سے استفادہ نہیں کیا گیا، بلکہ روایت سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، قرآن سے بھی استفادہ کیا گیا ہے ایک آیت کی تفسیر کے لیے، اور عقل سے بھی استفادہ کیا، اور باقاعدہ مفسرین کے اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ تفسیر جو ہے یہ کلامی تفسیر ہے، ادبی تفسیر ہے، اور اس کی جو جلدیں ہیں وہ 10 جلدیں ہیں اس تفسیر مجمع البیان کی. جناب امین الاسلام تبرسی صاحب، علامہ تبرسی صاحب نے یہ کتاب 62 سال کی عمر میں لکھی ہے، اور محمد بن یحییٰ ایک شخصیت ہیں، سبزوار شہر کے جو سادات تھے ان کے یہ سردار تھے محمد بن یحییٰ. انہوں نے باقاعدہ جو ہے امین الاسلام تبرسی صاحب کو یہ درخواست کی ان سے کہ ایک تفسیر جو ہے وہ لکھیں. تو امین الاسلام تبرسی صاحب نے پھر یہ تفسیر مجمع البیان لکھی، جو تقریباً 6 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی. اور تفسیر تبیان کا پہلے ایک دفعہ تعارف کروایا جا چکا ہے پہلے ایپیسوڈ میں، کہ تفسیر تبیان ایک بہترین تفسیر ہے جو شیخ طوسی علیہ الرحمٰ نے لکھی تھی، اور مجمع البیان سے وہ پہلے لکھی گئی ہے. اور جناب علامہ تبرسی نے شیخ طوسی کی تفسیر تبیان سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں تو بعض عبارات بھی آپ کو ایسی ملیں گی کہ بالکل بعین ہی اسی تبیان والی عبارت کو اٹھا کر مجمع البیان میں لکھا گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو بہت زیادہ جو ہے جناب علامہ تبرسی نے تفسیر تبیان سے استفادہ کیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے علامہ تبرسی نے تفسیر تبیان کو. لیکن پھر آپ کے ذہن میں ممکن ہے ایک سوال پیدا ہو کہ اگر وہ تفسیر جو تبیان ہے وہ لکھی جا چکی تھی، اور علامہ تبرسی نے بھی انہی سے استفادہ کیا ہے اور بہت ساری عبارات کو بھی عین ہی نقل کیا ہے، تو پھر مجمع البیان لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لکھی گئی دوبارہ؟ کس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تفسیر تبیان اور تفسیر مجمع البیان میں بہت سارے فرق ہیں. ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجمع البیان لکھی گئی، वो फ़र्क यह है कि तफसीर तिबियान मुनज़्ज़म नहीं थी। मुनज़्ज़म ना होने का मतलब क्या है, यानी मसलन एक आयत है, एक आयत को लिया गया है, उसके ज़ैल में जो तफसीर बयान की गई है उसमें पहले हमने बयान किया है कि लुगत से इस्तफादा किया गया है, बाकी आयात से इस्तफादा किया गया है, रिवायत से इस्तफादा है, अक़ल से इस्तफादा है, अकवाल सहाबा के अकवाल वगैरह नकल किए गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पराकंदा थीं। ऐसा नहीं था कि मसलन एक उनवान दिया जाए और उसके ज़ैल में जितनी उस उनवान से मरबूत जो चीज़ें हैं उनको ज़िक्र किया जाए, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि पराकंदा और नामुनज़्ज़म चीज़ें जो हैं वो ज़िक्र की जाती थी। लेकिन अल्लामा तिबरसी ने मजमुअल बयान में जो काम किया है वो ये है कि उन मतालिब को मुनज़्ज़म किया है। मुनज़्ज़म किया है मतलब क्या है, यानी एक हेडिंग दी है, मसलन एक आयत को ली है, उसके ज़ैल में अगर अदबियात की बहस करनी है तो वहाँ पे अदबियात की हेडिंग दी है और नीचे अदबियात की बहस की है। इसी तरीके से अगर शान नुज़ूल की बहस करनी है तो पहले शान नुज़ूल की हेडिंग दी है, फिर शान नुज़ूल के मुतल्लिक बहस की है। इसी तरीके से बाकी मतालब जितनी भी उन्होंने बयान करनी थी, मसलन किरात को बयान करना था तो किरात की हेडिंग दी है और फिर नीचे जो है उस आयत के मुतल्लिक जितनी किरातें थी उनको ज़िक्र किया, लेकिन ये चीज़ जो है तफसीर तिबियान में नहीं थी। तो इस लिहाज से ये एक बहुत असासी फ़र्क है तफसीर तिबियान और मजमुअल बयान के दरमियान। अगर फ़र्क को बयान किया जाए तो यही है, यानी तफसीर मजमुअल बयान में मतालब को मुनज़्ज़म किया गया है और बाज़ मतालब का इजाफ़ा भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि वही जो तफसीर तिबियान के मतालब थे उन्हीं को उठाकर मजमुअल बयान में लिख कर मुनज़्ज़म कर दिया, नहीं, बल्कि बाज़ मतालब जो है अपनी तरफ से शेख तिबरसी ने ज़िक्र किए हैं। और इसी तरीके से लुगात और अदबियात की जो दकीक बहसें थीं उनको भी अल्लामा तिबरसी ने मजमुअल बयान में बयान किया, जो कि तफसीर तिबियान में नहीं है। तो अब आते हैं कि क्या ये जो तफसीर है मजमुअल बयान, ये अहले सुन्नत मुफस्सिरीन के दरमियान भी इसकी कोई मकबूलियत थी या नहीं? बिल्कुल इसके मुतालिक बयान हुआ है कि ये तफसीर मजमुअल बयान जो है अहले सुन्नत मुफस्सिरीन के दरमियान भी बहुत मकबूल थी, जैसा कि जनाब ज़ाहबी जो हैं उन्होंने अत-तफ़सीर वल मुफस्सिरून में, और इसी तरीके से शेख महमूद शलतूत जो कि मिस्र के साबका मुफ्ती भी रहे हैं, उन्होंने बकायदा इसके मुतल्लिक कहा है कि ये तफसीर एक बहुत ही मुनज़्ज़म तफसीर है और बेहतरीन मतालब जो हैं इस तफसीर के अंदर बयान किए गए हैं। तो बहरहाल अल्लामा तिबरसी जो हैं उन्होंने इस किताब मजमुअल बयान के मुकदमा में एक और चीज़ जिसका ज़िक्र किया है वो है उलूम कुरान की बाज़ अबहास को ज़िक्र किया है, जो कि बहुत ही असासी और बुनियादी हैसियत रखती हैं उलूम कुरान में। मसलन आयात की तादाद को बयान किया है कि कुरान की जितनी भी आयात हैं इनकी कुल तादाद कितनी, उसमें मुख्तलिफ अकवाल ज़िक्र करके और बाकी जो एक मोतबर कौल है उसको भी ज़िक्र किया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों में जो मारूफ कुर्रा थे, कारी थे, उनका भी ज़िक्र किया है और उनका तारुफ करवाया है। और इसी तरीके से ये जो कहा जाता है कि कुरान जो है वो 7 हरफों पर नाजिल हुआ है और बाज़ लोग इससे 7 किरातें मुराद लेते हैं, तो उसके मुतल्लिक बकायदा शिया इमामिया का नज़रिया बयान किया है कि नहीं, कुरान जो है एक हर्फ पे और एक किरात पे नाजिल हुआ है, ये मुकदमा में बयान किया है। इसी तरीके से तफसीर, तावील, तदब्बुर, इनके मानी बयान किए हैं, सही तफसीर का तरीका बयान किया है, तफसीर बिर राय की हुरमत हराम होना ये बयान किया है, कुरान के नामों का ज़िक्र किया है, कुरान का मौजज़ा होना, कुरान तहरीफ नहीं हुआ, जैसा कि हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा बाज़ अहले सुन्नत बरादरान की तरफ से ये कहा जाता है कि शिया जो है वो तहरीफ के कायल हैं, जबकि अल्लामा तिबरसी ने 6 हिजरी में ये बयान कर दिया था कि कुरान जो है वो तहरीफ नहीं हुआ। और फिर ये भी कहा है कि कुरान की जो इस वक्त तरतीब है ये वही तरतीब है जो पैगम्बर इस्लाम के दौर में तरतीब थी। कुरान और हामला ने कुरान की फजीलत को बयान किया है, किरात कुरान को अच्छी आवाज़ से, यानी कुरान की किरात को अच्छी आवाज़ से किरात करना, पढ़ना जो है इसके मुतल्लिक चीज़ें ज़िक्र किए हैं। तो बहरहाल जैसा कि हमने बयान किया है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ में अल्लामा तिबरसी ने ये चीज़ें बयान की हैं। मसलन वो अगर एक आयत को लेते हैं तो उसमें पहली जो बहस होगी उसमें लिखेंगे मसलन इस आयत के मुतल्लिक, या मसलन एक सूरा है तो सूरा की फजीलत को बयान करेंगे पहले, और उसकी जितनी भी सूरा के अंदर आयात हैं उनको बयान करेंगे कि तादाद कितनी है इनकी, अगर इख्तलाफ़ है मुफस्सरीन के दरमियान तो उसको भी बयान करेंगे। इसी तरीके से बयान करेंगे कि अल-हुज्जा की हेडिंग देंगे। अल-हुज्जा की हेडिंग का मतलब ये होगा कि इस आयत की इतनी किरातें हैं और उनमें से जो बेहतरीन किरात है उसकी दलील हमारे पास के, अल-हुज्जत यानी दलील, दलील को बयान करेंगे। इसी तरीके से अल-लुगा की हेडिंग देंगे और फिर उस आयत में जितने भी कलिमात हैं उनकी मानी को बयान करेंगे। अल-इराब की हेडिंग देंगे तो उसमें जो है अदबी मबाहिस को ज़िक्र करेंगे, नावी और सरफी मबाहिस को ज़िक्र करेंगे। अन-नुज़ूल की हेडिंग देंगे तो उसमें शान नुज़ूल को बयान करेंगे। अल-माना की हेडिंग देंगे तो उसमें तफसीर को बयान करेंगे, यानी उस आयत की तफसीर क्या बनती है। तो बहरहाल इस तफसीर मजमूल बयान के अंदर जो है मबाहिस फ़िकी भी मौजूद हैं, मबाहिस कलामी भी मौजूद हैं, और जो फ़िकी एतबार से शिया नज़रियात हैं या कलामी एतबार से जो शिया नज़रियात हैं उनको बेहतरीन दलीलों के साथ जो है साबित किया। तो बहरहाल एक बेहतरीन तफसीर है, इस तफसीर से इस्तिफादा करना चाहिए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।